राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 8 दिसंबर 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे कलकत्ता में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण।
भगवान ने मनुष्य को विशेष विवेक दिया है कि बड़ी लंबी है, एक नेत्रों की दृष्टि होती है, एक बुद्धि की दृष्टि होती है, एक विवेक की दृष्टि होती है। तो नेत्र आदि की इंद्रियों की दृष्टि है ये सीमित है, नेत्रों से हम थोड़ी दूर तक ही देख सकते हैं, अगर ही नहीं देख सकते। ऐसे कान से भी थोड़ी दूर के शब्दों को सुन सकते हैं और नहीं सुन सकते। त्वचा का स्पर्श तो बहुत बड़े थोड़ा होता है और गंध की और रस की, इसकी रचना थोड़ी है, रचना से बहुत थोड़ा चख सकते हैं। इन सब में कानों की दृष्टि शब्द सुन जाती है। पांच ज्ञानेन्द्रियों में ये जो कर्णेन्द्रिय है ये विशेष काम करती है। दूसरी इंद्रियों का विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच विषय है। तो पांचों विषयों को तो पांचों इंद्रियों ग्रहण करती है, परंतु कान इंद्रिय है वो कर्णेन्द्रिय ये अपने विषय को भी स्मरण कर ग्रहण करती है। इसके सिवाय इंद्रियातीत को भी ये सुनती है समझती है, इनमें दो शक्ति है ज्ञानेन्द्रिय होगी। ऐसे जीव में कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय दो ही, रचना है एक जिह्वा है, रचना है ज्ञानेन्द्रिय है जिह्वा है, ये कर्मेंद्रिय है। तो दो शक्ति है, परंतु कान में ज्ञानेन्द्रिय दो शक्ति है, ये कानों में विशेषता है। एक दो शब्द आता है उसको सुनते हैं। शब्द ये दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक होता है एक ध्वन्यात्मक होता है। ये वर्ण जितने अक्षर है इनसे जो होने वाला शब्द है वो वर्णात्मक शब्द है, और ये बाजा आदि का शब्द होता है वो ध्वन्यात्मक शब्द होता है। इसमें वर्ण नहीं होते, ध्वनि होती है। तो दोनों फिर ध्वन्यात्मक शब्दों में कई तरह के भेद है, वर्णात्मक कई भेद है। ये कानों का विषय है, कानों का विषय उनसे एक विलक्षण बात सुनने में आती है, जैसे स्वर्ग है नरक है इंग्लैंड है फ्रांस है चीन है जापान है, इन देशों की बातें कानों के द्वारा सुन सकते और कोई इंद्रिय से सुन नहीं सकते, उसका निश्चय नहीं करते। तो कानों के द्वारा जो कान से परोक्ष है उन बातों को भी सुनते हैं, इसी कान से परमात्मा की बात सुनते हैं, धर्म की बात सुनते हैं, अधर्म की पाप की पुण्य की ये बातें सुनते हैं जो दूसरी इंद्रियों का विषय नहीं है। कर्ण में कारण इंद्रिय में इतनी विलक्षणता है, इस वास्ते जहाँ पारमार्थिक बात जाती है वहां सुनने की बात विशेष आती है। और हम भी अपने बात करते हैं तो सुनने की बात सुनने के लिए ही सब भाई बहन इकट्ठे हुए हैं। तो सुनने की क्या विलक्षणता है कि ये लौकिक और अलौकिक मानो हमारे सामने प्रत्यक्ष कान में सामने शब्द आदि उनको सुनते हैं, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है उनकी बातें कि देश स्वर्ग है, परमात्मा है, वैकुंठ लोक है, ये 14 भवन है, ऊपर के सुतल बितल, नीचे के सुतल बितल, सातल सातल महातल पाताल, भूलोक भोरलोक महरलोक जललोक तपलोक सत्यलोक, ये ऊपर के है 14, तो 3 लोग भी कहते हैं स्वर्ग मध्य पाताल, और तीनों के भेद होने 14 भुवन है, तो 14 भुवनों की बात है कानों से सुनते हैं। इसके सिवाय भगवान है, परमात्मा है, उस बात को भी हम सुनते हैं कानों के द्वारा, उनको सुनकर हम मानते हैं, और उनका विषय नहीं है, किसी इंद्रिय का भगवान विषय नहीं है। तो शास्त्रों से सुनते हैं, और जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने परमात्मा तत्व का अनुभव किया है, उनके द्वारा भी हम सुनते हैं। तो सुनकर ज्ञान हमारे को बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबे समय ज्ञान होता है। तो संत महात्मा पुरुषों के कहने से हम समझते हैं कि परमात्मा है, शास्त्रों के सुनने से के परमात्मा है, तो उनमें एक विलक्षणता है कि आपकी शास्त्रों पर संत महात्माओं पर श्रद्धा होगी तब तो उसको हम मानेंगे, और शास्त्रों पर हमें श्रद्धा नहीं होगी तो उस बात को हम नहीं मानेंगे। इंद्रियों से दिखने वाले में तो मानने न माननी बात सामने दिखता क्या करे, थम्बा है, दिखता है, ये मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, दिखते है, वृक्ष है, दिखते है, इनको मानना ही पड़ता है। पर जो नहीं दिखते है, इंद्रिय दूसरे इंद्रियों का विषय नहीं है, कानों का ही विषय केवल है, उसमें है हम देख नहीं सकते उनको, वैकुंठ लोग है, भगवान है, परमात्मा है, ये केवल मानने का विषय है। पहले समय पाकर इनका साक्षात्कार होता है, मनुष्य उनको भी साक्षात्कार देख सकते हैं, नेत्रों से देख सकते हैं, परंतु साधना के द्वारा स्वतः इंद्रियों का विषय ये नहीं है, और स्वतः इंद्रियों का विषय और भी स्वतः है। तो कानों से हम बहुत बातों का ज्ञान संपादन कर लेते हैं, शास्त्र पढ़ करके, बहुत शास्त्र न्याय है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, ऐसे इनका ज्ञान हमारे को हो जाता है, बहुत बातों का ज्ञान हो जाता है, कानों के द्वारा बहुत ज्ञान होता है। अब बहुत ज्ञान होता है, उसमें 2 विभाग है, एक विभाग है लौकिक और एक है अलौकिक। जो ये लोगों का ज्ञान है 14 भुवनों का, और पृथ्वी मंडल के ऊपर जो चीन जापान आदि देश है इनका ज्ञान है, ये लौकिक ज्ञान है। और इनके सिवाय जो अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रत्यादि ये कोटि कोटि ब्रह्मांड, जैसे ये ब्रह्मांड है, ये अंडा है, एक अंडा वो ब्रह्मांड, उसके भीतर जितने उनका ज्ञान हमारे को होता है, ऐसे ब्रह्मांड जिसमें एक सूर्य है, चंद्रमा है, तारे है, नक्षत्र है, भूमंडल है, समुद्र है, ये सब मिलकर एक ब्रह्मांड हुआ, ऐसे ब्रह्मांड अनंत है। भगवान के एक एक रूप में रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के रूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। जैसे सूर्य उदय होता है और उसका घाम आता है आतप, उसमें कुवाड बंद होता है तो कुवाड के छेद में होकर किरण आती है भीतर, वो किरण भीतर आती है, उसमें देखो तो डंडे की तरह वो दिखता है प्रकाश, उस प्रकाश के भीतर छोटे 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 कण घूमते दिखते हैं, दृष्टि देखो आप तो बहुत बारीक बारीक कण घूमते हैं, वो सूर्य की किरण पड़ती वहां दिखते हैं, और जगह यहाँ भी है वो कण, कण था बहुत छोटे छोटे कण, पर वो दिखते नहीं है। जैसे एक कण के एक धारा होती है सूर्य की, उसके बीच में अनगिनती के वैसे कर्ण है, आप गिन नहीं सकते, बारीक बारीक कर्ण है, ऐसे भगवान के रोम के भीतर ऐसे ब्रह्मांड अनेक है, वो सब मिलकर परमात्मा का रूप है, तो वो रूप अनंत है, असीम है, अपार है, उसी सीमा नहीं है, ऐसा परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्मा की बात पहले हम सुन करके ही मानते हैं, बिना सुने नहीं मान सकते। सुनने में शास्त्रों की बात सुनते हैं अथवा जो अनुभव कर चुके हैं शास्त्रों के अनुसार साधना की है, साधन करके अनुभव किया है, तो भी अनुभव करने वाले महात्मा पुरुष उनसे हम सुनते हैं। वो माने न माने हमारी स्वतंत्रता है, नहीं माने भगवान ने मनुष्य को एक स्वतंत्रता दी है, माने न माने तो दोनों ही बातें हैं, तो उसको मानना चाहिए। अब विचार इस पर आता है, थोड़ा विचार करें कि मानना ठीक है कि न मानना ठीक है। आजकल की दुनिया तर्क प्रधान है, सीधी सारी बातें नहीं मानते, तर्क से मानते हैं। अभी सामने ये टेलीविजन टेलीविजन न हो तो ये बात आज की दुनिया मान नहीं सकती कि वहां विलायत में बोलता यहाँ दिखता है, असंभव बात हो ही नहीं सकता। हमारी सुनी हुई बात है, कुछ वर्षों पहले आर्य समाज के व्याख्यान होते थे, उसमें कहते हैं पुराणों की गप ऐसे कहते थे, और पुराण में लिखा है कि विमान होते हैं, ऊपर उड़ते हैं, आकाश उड़ते हैं, बिल्कुल गप्पे को आकाश में ब्रह्मा उड़ता है कोई, ऐसे कहते थे। मैंने सुना है व्याख्यान देते हुए, नहीं मानते थे। तो आज कोई सुनी चुप नहीं, आज कोई नहीं कहते विमान नहीं होता, क्यों हुआ आकाश उड़े वाले सामने आएगी चीजें। तो हमारे सामने जो बिजली की अलौकिक विलक्षणता आई है, उस विलक्षणता को बिना देखे नहीं मान सकता है, आज की दुनिया नहीं मान सकती, परंतु आज करेगा कान पकड़ मानना पड़ता है। सामने ऐसी चीजें है, एक्सरे लेते हैं, उस एक्सरे से शरीर में चीजें दिखती है, सब रूप फोटो आ जाता है, तो इन बातों को मानना पड़ता है आजकल। परंतु किन किन बातों को मानते हैं, उनमें दो विभाग है, जिससे मनुष्य का पतन हो, वो भोगों में आसक्ति हो और फंस जाए, ऐसी बातों को तो प्रकट हो गया, देखने लगते हैं। पर जिससे कल्याण हो, उद्धार हो, मुक्ति हो जाए, महान शांति महान आनंद मिल जाए, ऐसे पारमार्थिक विषय वो आज नहीं मानते। वो परोक्ष विषय है तो परोक्ष दोनों ही है, दोनों होते हुए भी ऐसे कई आविष्कार हो गए हैं, देश विदेशों का बिल्कुल संबंध हो गया है, उन बातों को हम जानते मानते हैं, परंतु उनमें जो अलौकिक तत्व है, विलक्षण बात है, उस बात को नहीं मानते। वास्तव में परहेज किस बात का है, कल्याण का, उद्धार न हो जाए, मुक्ति न हो जाए, महान बंधन हो जाए, जन्म मरण में दुख पाते रहे, ऐसी बातों को तो मान लेंगे। पर जिनने वाले ऋषि महर्षि महापुरुष है और शास्त्र है, इस बात की गीता आसुर संपत्ति जब शुरू होती है, प्रकृति वाले राक्षसी प्रकृति वाले वे प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, मानो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस बात का उनको ज्ञान नहीं है। आजकल के पढ़े हुए जो बालक है, नवयुवक है, उनको ये नहीं भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का ज्ञान नहीं है। और ज्ञान नहीं इतनी बात नहीं है, मैंने देखा है जो शास्त्र से निषिद्ध बात है उनको भी आदर देते हैं, बिना जाने जिससे पतन हो जाए, ऐसी बातों को ये मानते हैं। मैंने यहाँ देखा है, इस कलकत्ते में आते हुए मेरे को 60 वर्ष हो गए हैं, यहाँ घूमना फिरना देखना मेरा देखता है, देखता हूँ मैं कितना सृष्टि का परिवर्तन हो गया, कितना बदल गया है, बड़े आश्चर्य की बातें मेरे देखते देख रहे। तो मैंने यहाँ घूमते हुए जो सुबह शाम घूमने का आता था, तो घूमते हुए देखा जिसमें नवयुवी आज करके पीपल में खड़े खड़े मूर्त है, पीपल में मानो पीपल का आदर करना चाहिए, नमस्कार श्रद्धा वृक्षाणाम, संपूर्ण वृक्षों में पीपल भगवान का स्वरूप है, और पीपल में ऐसी शक्ति है कि बांध के बेटा हो जाए, ऐसी शक्ति पीपल में है, बड़ी अलौकिक शक्ति अलौकिक दृष्टि भी। और ऐसे अश्वत्थ में मूल भगवान ने उर्द मूल का उसको अश्वत्थ कहा है, इतना पवित्र है तो उसको प्रसाद करें खड़े खड़े, तो ऊंधी वृत्ति होती है, तो उल्टी वृत्ति ऊंधे ऊंधे चलते हैं, कहने से मानते नहीं और शास्त्र पढ़ते नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, तो ऐसे उल्टी उल्टी चेष्टाएं मैंने कई देखी है युवकों की। तो उन क्यों है ऐसा, उनको पढ़ने को मिला नहीं, शास्त्र तो मिलने को पढ़ा नहीं स्वयं पढ़ा नहीं, और पढ़े हुए संत महात्मा पुरुष तत्व के उन पर श्रद्धा नहीं, उन पर विश्वास नहीं। विदेशी आदमी पर विश्वास है, पर अपने देश के अच्छे जानकार उन पर विश्वास नहीं। विदेशी लोग जर्मनी आदि है, जर्मन के रहने वाले भी अलबत्त इन बातों को आदर करते हैं, वहाँ संस्कृत अध्ययन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसका विचार करते हैं, वे कई बातें मानते हैं। परंतु हमारे यहाँ पले हुए हैं, रहने वाले हैं, वे अगर इस विषय में गहरे उतरे तो बहुत ज्यादा जान सकते हैं। यहाँ के वायुमंडल में, यहाँ की पृथ्वी में, यहाँ जगह में, अन्न में, यहाँ के पदार्थों में एक विलक्षण शक्ति है। यदि लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ जितनी जड़ी बूटी अन्न आदि पैदा होते हैं, इतने हरेक देश में पैदा नहीं होते। कारण उसका क्या है कि यहाँ 6 ऋतु होती है, शीतकाल, उष्णकाल और वर्षा काल, ये 3 तो कई जगह होता है, परंतु कई जगह खास ठंडक ही ठंडक रहती है, किसी जगह गर्मी गर्मी विशेषता से रहती है। और 3 ऋतु यहाँ, तीनों में 2-2 महीनों की 6 ऋतु होती है। तो सूर्य की किरणा यहाँ बहुत तरह की पड़ती है, इस वास्ते यहाँ घास है, पौधे है, जड़ी बूटी है, अनाज है, खाद्य पदार्थ है, ये कई तरह के पैदा होते हैं यहाँ। तो कई पदे होने के कारण है कि सूर्य की किरणा इतनी लक्षण पड़ती है, उनके विभाग है, वो 6 ऋतुओं होते हैं। तो 12 महीनों में 6 ऋतुओं में किरणों का प्रकाश पड़ता है, उससे अनेक तरह की चीजें पैदा होती है। सूर्य है, ये जगत चक्षु बताया है, नेत्र मात्र का चक्षु मात्र सब सूर्य है। सूर्य पक्ष भी है, नेत्र भी है, और सूर्य सबको अन्न जल देता है। सूर्य के प्रकाश से ही वर्षा होती है, सूर्य के प्रभाव से ऊंचा ऊंची खींचती है, उसे बरसाती है, जिससे वर्षा होती है, जिस वर्षा से पौधे पैदा होते हैं, और पौधों में शक्ति आई है, और पौधों में शक्ति चंद्रमा से आती है, पुष्णा में चौषधि सर्व शुभ भूतवार सहत्मक। और सूर्य भगवान आरोग्यम भास्कर आदि छेद, उसमें जहर के बदुषियों के लिए अनिष्ट जहर पैदा होता है, उसको सूर्य भगवान नष्ट करता है। इस वास्ते आरोग्यम भास्करादि छेद, आरोग्य निरोगता सूर्य भगवान से होती है। तो सूर्य से निरोगता आती है, उस सूर्य की किरणों में भेद इतना होता है, जिससे 6 ऋतु होती है यहाँ, 6 ऋतु और जगह नहीं होती। भूमंडल के इस विभाग में ही 6 ऋतु होती है। तो उस विभाग होने से उसमें बहुत चीजें पैदा होती है। जैसे भूमंडल में अनेक चीजें पैदा होती है, ऐसे ही यहाँ के विज्ञान में जो की भजन ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, साथ अध्ययन करते हैं, साधन करते हैं, उन साधन करने वालों में बहुत विलक्षण शक्ति आ जाती है, अलौकिक शक्ति आ जाती है, उनका विलक्षण असर पड़ता है। ये हमने देखा है और आपने भी देखा होगा, इसमें देखने की बात तो आप लोगों से छिपी नहीं होगा। बात याद आ गई, हम पढ़ते थे तो पहले महाराज से पढ़ते हैं, और पढ़ करके फिर एकांत में जाकर 2-4-5 मिले हुए पढ़ते थे सहपाठी, वो जाकर विचार करते थे आज क्या पढ़ाया, इससे यहाँ तक ये पढ़ाया, ऐसे उनका विचार करते थे। विचार करते करते कोई ऐसी बात आ जाती थी जो समझ में नहीं आती, तो भाई ये तो फिर पूछनी पड़ेगी, इसका क्या मतलब होता है। तो हम जाकर पूछते महाराज के सामने कि महाराज आज की बात आई, उसमें एक संदेह है, क्या बात है बोलो। तो उनके सामने जाकर पढ़ने लगते, पढ़ती बात समझ में आ जाती। ये हमारी बीती हुई बात बता दो, बिल्कुल अनुभव की। तो बात क्या है, उनके सामने पूछते तो कभी कभी वो बात उनसे पूछनी पड़ती, और कई बार उन्हें पूछनी नहीं पड़ती, सामने जाकर पूछने के लगते, और जो उच्चारण करते पढ़ते थे बात समझ में आ जाती। बट ऐसे मेरे पर असर पड़ा है काफी, उस समय हम जानते नहीं थे। फिर विचार आया है, संग करने से, पुस्तकों के पढ़ने से विचार, बात क्या है। तो जो पढ़े हुए पंडित हैं, उनके पास में एक ओरा रहता है, ऐसा पास पास में घेरा रहता है, जैसे अग्नि होती है, उस सुलगावत पास में तेजी ज्यादा रहती है, पीछे कम होती है, और प्रकाश जो तेज होता है धीरे धीरे दूर होता है, तो प्रकाश कम हो जाता है। तो पढ़े हुए पंडित हैं, उनके पास में वो विद्या का घेरा रहता है, वहां जाकर हम पूछते हैं तो बिना पूछे उनका ज्ञान हो जाता है, साफ साफ दिखने लगता है। ये हमारा देखने की बात है, आप लोगों ने पढ़ाई की तो आप लोगों की देख, ये छोटे बात है ये, तो वो उनमें ज्ञान रहता है, उसका प्रकाश होता है। ऐसे यहाँ आध्यात्मिक तत्व में जितने ऊंचे उठे हुए पुरुष होंगे उनमें एक ज्ञान विलक्षण प्रकाश रहता है जो साधारण आदमियों में नहीं है। और दूसरी विद्या कई तरह की लिपि और कई तरह की भाषाओं का ज्ञान है, उस ज्ञान के करने से हम विदेशों के साथ में व्यवहार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं उन देशों की भाषाओं का ज्ञान होने से, ये सब काम की चीज है। परंतु आध्यात्मिक जगत जो कि वास्तव में भारतीय शास्त्र है, पुराण है, वेद है, इनमें जो विलक्षण बातें हैं उन विलक्षण बातों का ज्ञान लौकिक भी होता है, अलौकिक ज्ञान होता है, तो उनमें ज्ञान विलक्षण होता है। वो विलक्षण ज्ञान जब उसको संपादन कर लेता है तो उसके पास जाते ही संसार की बातें भी सुलझ जाती, उलझ जाती है, वो उलझ सुलझ हो जाता है। दो आदमियों के आपस में लड़ाई होती है और लड़ाई होते बिल्कुल दिखता है कि तेरी गलती है, वो कहते तेरी गलती है, दोनों की अपनी अपनी गलती दिखती है। ऐसा भी काम पड़ा बताता हूँ आपको, वे दोनों जाकर पूछते हैं भाई हमारा आपस में विवाद है, ये ऐसा कहते हैं, हम ऐसा कहते हैं, हमारे लड़ाई हो गई आपस में, तो कोई बात बताओ। ऐसे उन पुरुषों के पास जाते हैं तो उसके पास सामने बात करते ही वो आदमी कहते हैं ये तो मेरा कसूर है इसमें, वो कहता है मेरा कसूर है, इतना फर्क पड़ता है, इतना असर प्रत्यक्ष पड़ता है कि भाई इसमें इनकी गलती नहीं मेरी गलती है, वो कहते हैं मेरी गलती है। ऐसे वो समझ में लगे क्योंकि प्रकाश उनके पास आध्यात्मिक आधिदैवक प्रकाश है, उससे भीतर के जो गुण अवगुण की बात है, कसूर की और न कसूर की बात है, वो साफ दिखने जाती है। वहां जाते हैं तो हमारी कई शंकाओं का समाधान हो जाता है और भीतर में अशांति है, दुख है, संताप है, जलन है, हलचल हो रही है, वो भी ऐसे पुरुषों के पास जाकर बैठे तो हलचल मिटती है, शांत होती है, शोक हो जाता है पुत्र मरने का उस रोग आदि का, तो वो शोक भी वहां जाते हैं तो हमारे प्रत्यक्ष अनुभव होता दूर हो जाता है। और अच्छे बात जानने वाले पुरुष उनके सत्संग में जाया जाए तो वह अपने मन में शंकाएं रहती है, उन शंकाओं का बिना पूछे तैसे समाधान होता है। कई कई सज्जन तो ऐसा कहते हैं मेरे सामने बातें आई है कि आज मेरी शंकाओं का ही समाधान हुआ, आज तो मेरे लिए ही बात कही, ऐसा उनको अनुभव होता। मेरे से कोई पूछ तुमने उसके मन की बात कही तो मैं सच्ची बात कहता हूँ, मेरे को ज्ञान नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ किस भाई किस बहन के भीतर में क्या शंका है, मेरे को ज्ञान नहीं है। लोगों को कभी कभी बहम पड़ जाता है कि अंतर्यामी है, हमारी बात कह दी, पर मैं तो साफ कहता हूँ मेरे को ज्ञान नहीं, मैं नहीं जानता हूँ कि किसकी कौन सी शंका है, क्या समाधान करूँ, ऐसा मेरे ज्ञान नहीं है। परंतु बात क्या है उसमें भी एक विलक्षण बात मैंने यहाँ कलकत्ते में काफी व्याख्यान दिया है और मैं काफी रहा हूँ, 7-8 महीना रहा हूँ यहाँ और व्याख्यान दिया है, तो उसमें मैंने ये बात देखी है कि मैं व्याख्यान देता था, फिर इसमें भाई सज्जन एक साथी थे चक्रधर जी महाराज, वो व्याख्यान देते थे वो पुराना गोविंद भवन में, तो मैं व्याख्यान देता हूँ, वे व्याख्यान वो पूरा होने पर आते थे तो प्राय करके मेरे व्याख्यान की बातें ही वो कहते थे, उन्होंने सुनी नहीं मेरी बातें पर वो विचार कहते थे। तो ऐसा मेरे अनुभव हुआ कि अभी दुनिया के लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है, जैसे प्यासे के लिए जल की आवश्यकता होती है, भूखे के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, झाड़ा पड़ने पर कपड़े की और मकान की आवश्यकता होती है, ऐसे इनके व्यवहार में इनके अंतःकरण में ऐसे ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है। वे बातें मैं कर रहा हूँ, वही बातें वो आकर कहते थे और मनुष्यों की ये बातें समाधान होता था। तो ऐसी बातों का समाधान होता है, इससे मालूम होता है मनुष्य की आवश्यकता है, उनको इस बात की प्यास है, तो वो प्यास के अनुसार उनको खुराक मिलती है, भोजन की जैसे खुराक, जल की जैसे खुराक मिलती है, ऐसे खुराक मिलती है। तो आध्यात्मिक तत्व की बात ये इस देश में बहुत विलक्षण है, आधिदैवक बातें आध्यात्मिक बातें बहुत विलक्षण बात है। एक आधिदैवक होते हैं, एक आध्यात्मिक होते हैं, एक आस्तिक, तीन विभाग है उसमें। तो आधिदैवक देवता हो रही है, जैसे पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विन, ये 33 देवता कहते हैं, 33 करोड़। पश्य आदित्यान, आदित्य 12 होते हैं, आदित्यान वसुन वसु आठ होते हैं, 20 हो गए, पश्चिम आदित्यान वसुन रुद्रादे 11 होते हैं और अश्विन अश्विनी कुमार होते हैं, ये 33 देवता है। तो 33 कोट की देवता है। तो भगवान ने वो बताया, तुम देखो मेरे में, सब मेरे में तुम देख लो। तो ये देवताओं की जो सृष्टि है वो आदि देव कहलाती है, और आदि आध्यात्मिक है जो आत्मा है, जैसे आप सबके बीच मैं हूँ, आपकी सत्ता है। ध्यान देना, थोड़ा सा विस्तार कर देता हूँ। आप अपने को मानते कि मैं हूँ, तब तो ज्ञान जिसे हो गए ना, मुक्ति जिससे हो जाए, कल्याण हो जाए, वो आत्मज्ञान क्या है? जो तो आपको स्वतः अनुभव है कि मैं हूँ, अपना होनापन का ज्ञान सबको है। अपने वृत्तियों का भाव और अभाव दोनों होता है, कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी ये मृत हो जाती है, कभी कोई अनुकूल बोलता है, कभी मेरे प्रतिकूल बोलता है, कोई मेरी निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है, कोई आदर करता है, कोई निरादर करता है। इन बातों का ज्ञान होता है। इन ज्ञानों में उन ज्ञान का आदि और अंत होता है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति होती है, आप ध्यान दें इस बात पर। तो जागृत अवस्था और दिखती है, और सो जाते हैं सुपन आता है, सुपन अवस्था और दिखती है, और गाढ़ नींद आती है, उसमें कुछ भी याद नहीं रहता, वो नींद आती है। तो ये तीन अवस्थाएं प्राय हमारी जानी हुई है। ऐसे एक मूर्छा अवस्था होती है, एक समाधि अवस्था होती है। किसी ने बड़े ऑपरेशन करवाया है तो उसमें मूर्छा होती है, बेचे तो जब बेहोश हो जाता है, वो मूर्छा अवस्था होती है। और एक परमात्म तत्व में स्थित होने पर संसार से निवृत्त होकर उसमें स्थिति होती है, वो समाधि अवस्था होती है। ऐसे पांच अवस्था होती है, तीन अवस्था प्राय सबकी होती है। और इलाज कराते हैं जिनको रोग अपना समझाया है, उनको मूर्छा अवस्था का भी ज्ञान है। तो एक मूर्छा अवस्था होती है, एक समाधि होती है। उस समाधि में कई भेद है, फिर वो सबकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, सभी समाधि, निर्विकल्प समाधि, धर्म में समाधि, ऐसी समाधियों का भेद है कई। तो वो एक विलक्षण अवस्था होती है, परंतु तीन अवस्था तो सबको होती है। तो तीन अवस्था होती है, उसमें आप विशेष ध्यान कृपा करके, दो बार कहता हूं फिर ध्यान दें। जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था नहीं है, सुषुप्ति अवस्था नहीं है, जागृत अवस्था है। और स्वप्न अवस्था होती है, उसमें स्वप्न अवस्था तो स्वयं होती है, जागृत उसमें नहीं है और उसमें सुषुप्ति भी नहीं है। अब सुषुप्ति अवस्था में जागृत अवस्था भी नहीं है, स्वप्न अवस्था भी नहीं है, गाढ़ नींद है, उसमें कुछ ज्ञान नहीं होता। तीन अवस्थाओं के भाव और अभाव को आप जानते हैं, ये बारीक बात थोड़ी, उस तत्व ज्ञान तक पहुंचाने वाली बात है, ऐसी बड़ी सीधी सरल है। जागृत अवस्था का भाव और जागृत अवस्था का अभाव, स्वप्न अवस्था का भाव और स्वप्न अवस्था का अभाव, सुषुप्ति अवस्था का भाव और सुषुप्ति अभाव। भाव अभाव क्या? जागृत तो अभी है, ये जागृत का भाव मान होना पर है, जागृत हुआ है, और स्वप्न और सुषुप्ति नहीं है, ये अभाव है। ऐसे स्वप्न अवस्था में जागृत का सुषुप्ति का अभाव है, वो नहीं है। ऐसे सुषुप्ति में जागृत स्वप्न का अभाव है। तो जितने पदार्थ है उनके भाव और अभाव दोनों का ज्ञान आपको है, परंतु आपके खुद के अभाव का ज्ञान किसी को नहीं है। ये बारीक बात है, थोड़ी सी ध्यान देने समझ में आएगी। मैं हूं और मैं नहीं हूं, अपने अभाव का ज्ञान किसी को नहीं है। स्वप्न में यह अवस्था नहीं है, सुषुप्ति को जागृत को देख ले, और सुषुप्ति में यह अवस्था नहीं है, जागृत को स्वप्न को देख ले। पर हम आप तीनों अवस्थाओं को जानते हैं, तीनों भाव अभाव को जानते हैं, तो तीनों अवस्थाओं से आप अलग हैं। ये आध्यात्मिक विषय है, ये आध्यात्मिक विषय है। इससे अगाड़ी आस्तिक विषय होता है जो परमात्मा है। परमात्मा की ये प्रकृति है, एक अपरार एक परा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकारी, आठ प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है। इससे अगर जीव है जो सब अपने आप को जानते हैं और अवस्थाओं के भाव भाव जानते हैं, ये जीव है। इसलिए जो अध्यात्मिक एक रहता है वो अध्यात्मिक तत्व तो है, और इनमें अपरा प्रकृति है ये, और पृथ्वी जल ये अपरा है। दोनों अपरा प्रकृति को जानने वाले एक परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। वो जो जानने में नहीं आता, परंतु वो मालिक है, उसका अंश है। ये जड़ प्रकृति का अंश, आठ प्रकार के भेदों वाले शरीर बनते हैं, और उसका साक्षात अर्थ जीवात्मा स्वयं ममई वर्ष हो जीव लोगे जीव भूत सनातन, वो अनाधिकार से है, वो जीव सत्ता है होनापन। तो इसके होनापन का जो है वो आपका मौजूद है निरंतर, बालकपन में था वो आप जानते हो, जवानी को जानते हो, वृद्धावस्था को जानते हो, अत्यंत बालक अवस्था की बात आपको याद नहीं है क्योंकि उस समय बुद्धि विकसित नहीं हुई थी। थोड़ी बुद्धि विकसित हो गई है उस बात की आपको याद रहती है। तो उन बातों के बालकपन के भाव अभाव को, जवानी के भाव अभाव को, अवस्था के वृद्धावस्था के भाव अभाव को बूढ़े हो गए वो जानते हैं। ऐसे रोग अवस्था भी रोग अवस्था को आप जानते हैं। तो जानने वाले आप हो उसका अभाव नहीं होता है, ये बात है खास। वो तीनों अवस्थाओं में जागृत स्वप्न सुषुप्ति और बालक जवान वृद्ध अवस्था, इन अवस्थाओं में अपना होना पर नित्य निरंतर रहता है। इसका क्या पता कि जागते हैं तब आदमी कहता है जागने पर कि मैं ऐसा सोया था गाढ़ नींद में, मेरे को कुछ भी पता नहीं था और बड़ा सुख से सोया था, बड़ा सुख, नींद बड़ी अच्छी आई, आज गहरी नींद आ गई, मेरे को कुछ भी होश नहीं रहा, ऐसी गाढ़ नींद में सोया था। तो सोया था ये है स्मृति, याद है, ये अभी ज्ञान नहीं है, वो याद है किसका, जो सुषुप्ति का ज्ञान हुआ था। ऐसा सुख से सोया सुख का और कुछ भी पता नहीं था दूसरे ज्ञान के अभाव का, उस समय में अनुभव हुआ था। अब जागने पर वो स्मृति होती है, उसे याद आती है कि उस समय में कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था ये तो पता था ना, जैसे कोई बाहर से आवाज दे किसी घर में कि भाई अमुक आदमी है घर में, तो कहते हैं कि वो तो बाहर गया अब घर पर नहीं है, तो बाल कहते वो नहीं है, परंतु बाहर वाला ये जानता है कि बोलने वाला भी नहीं है, ये कैसे जाने के बोलने वाला कहता कौन है कि यहाँ नहीं है। तो अभाव के जानने वाला भाव रूप एक आदमी है, आप जिसको पूछते वो नहीं है पर कहने वाला भी नहीं है, कैसे मानोगे आप, नहीं कहता कौन है। ऐसे गाढ़ नींद की बात, सुख से सोया था कुछ भी पता नहीं है, ये आप जागने पर कहते हो तो आपकी मौजूदगी सुषुप्ति में थी, नहीं तो आप कैसे कहते हो कि उससे पता नहीं है। मैं सुख से सोया कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था इसका पता उस समय भी है। तो सुषुप्ति में भी आप है, जागृत में भी आप है, स्वप्न में भी आप है, बाल्यावस्था में आप है, जवान अवस्था में आप है और वृद्धावस्था में आप है, रोग अवस्था में आप है, निरोग अवस्था में आप है, धनी बनते हो धनवान अवस्था में आप है, गरीबी आ जाए तो गरीब अवस्था में आप है, आपका मान होता है तो उसमें भी आप है, अपमान होता है उसमें भी आप है, आपकी निंदा होती है उसमें आप है, आपकी स्तुति प्रशंसा होती है उसमें भी आप है, आदर होता है उसमें आप है, निरादर होता है इसमें आप है। ये अवस्थाएं बदलती है पर बदलने पर आप है, वो आपका स्वरूप है जिसका अभाव नहीं होता है, वो सदा ही रहता है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, सतः अभाव है ना विद्यते सद वस्तु है, उसका अभाव कभी नहीं होता। अवस्थाओं का भाव अभाव होता है, धनवत्ता निर्धनता, आदर की निरादर की, स्तुति की निंदा की, अनुकूलता की प्रतिकूलता की, सुख की दुख की, संयोग की वियोग की, आपको ख्याल है, इनको आप जानते हो अलग अलग, परंतु अपने खुद के अभाव का ज्ञान किसी को नहीं है, क्यों खुद के अभाव होता ही नहीं, भाव निरंतर रहता है। ये आध्यात्मिक विषय है, इस आध्यात्मिक विषय का ठीक अनुभव कर ले साधना करके तो ठीक आपको ज्ञान होता है, तो आपके शोक है, चिंता है, भय है, उद्वेग है, हलचल है, ये मिट जाएंगे कि वहां नहीं है, ये तो आने जाने में रहते हैं, वहां नहीं है, ऐसा आध्यात्मिक हिसाब है। उस आध्यात्म की बात हम मुख से कहते हैं वो कानों से सुन सकते हैं। सबके भाव अभाव को जानने वाला स्वयं है, उसकी बात कान के द्वारा आप सुन सकते हैं, आंख से नहीं दिखती, त्वचा से नहीं दिखती, रसना से नहीं दी, जीभ से चाट नहीं सकते और नाक से सूंघ नहीं सकते। जो ये पांच ज्ञानेन्द्रिया है इनमें कान के द्वारा उस बात को सुनते हैं और समझते हैं, तो कान में उस आध्यात्मिक तत्व के जनाने की शक्ति भी कान में है और कान का विषय है शब्द जो ध्वनिया तुम बना, तो उसको जानने की शक्ति भी कान में, तो कान में दो शक्ति है। एक कान के प्रत्यक्ष होता उसकी है, एक प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है। जो कान का विषय नहीं है वो आत्मा, किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, मन का विषय भी नहीं है, बुद्धि का विषय भी नहीं है, ऐसे आत्मा को भी कान के द्वारा सुन करके आप मानते हैं हाँ ऐसा है। अब विश्वास करे ना करे वो आपकी बात है, पर कान में ये शक्ति है। इस बात से सत्संग करने में सुनने की बात कही जाएगी, सुनो तो सुनने के द्वारा बहुत विलक्षण ज्ञान होता है, अलौकिक ज्ञान होता है जो किसी इंद्रिय से नहीं होता। उस तत्व को जानना है, ये सबसे ऊंचा ज्ञान है। अध्यात्म विद्या विद्याना, भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं 10वें अध्याय में, उसमें अध्यात्म विद्या जितनी विद्या है, कई तरह की विद्या है, 14 विद्या हमारे मानते हैं, उन 14 विद्याओं में अध्यात्म विद्या मेरा स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, जिससे जीव का कल्याण हो जाए, जीव मुक्त हो जाए, रहते हुए राग द्वेष हर्ग शोक चिंता भय उद्वेग इससे रहित और ऊंचा उठ जाता है, वो अध्यात्म तत्व है। वो अध्यात्म जिसका अंश है, उसका अंश जो है वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। ये जीव तो सब उस अध्यात्म जगत में आ जाते हैं, जीव के सब आत्मा है, वो सच्चे है, पर आत्माओं का सबका जो उत्पादक है अथवा विच्छेदक है, सबका पालक है, वो यस्मात क्षरम अतीतो हम अक्षरादिक से उत्तम, ये अक्षर जितने क्षर तो ये नाश होने वाले अपरा प्रकृति और अपरा प्रकृति अक्षर है, उन दोनों को जो क्षाक्षर उत्खर अक्षर दोनों का शासन करने वाला वो ईश्वर है। विभर्ति अव्यय ईश्वर अक्षर, अक्षर से विलक्षण ईश्वर जो सबका भरण पोषण करता है, सबका लालन पालन करता है, सबको शक्ति देता है, अनंत शक्ति ऐसी है, ऐसे ईश्वर एक शक्ति है। अब इसमें थोड़ी बात में जैसे अध्यात्म बात कही, ऐसे ईश्वर के विषय में बात कहता हूं, आप ध्यान देकर के सुनें। अब जानने वाले मानने वाले हम लोगों में दो विभाग है, एक ईश्वर को मानते हैं, एक ईश्वर को नहीं मानते। दर्शनों में भी ऐसे है, जैन आदि ईश्वर है वो भगवान को मानते हैं, जो जीव भगवान बनता है उनको, परंतु स्वतः भगवान तत्व है उसको नहीं कहते, और शास्त्र में ही नहीं है, जैन शास्त्र भी नहीं मान। मेरे काम पड़ा है, उनसे बातें हुई है, तो मैंने कहा वो ईश्वर आपके शास्त्र में नहीं है, उसको आप कैसे जान सकते हो, आपके शास्त्र में उसका वर्णन नहीं है। आत्मा अनात्मा का वर्णन है, जड़ चेतन का होता है, जीव समुदाय है, ये सजीव और निर्जीव दो पदार्थ मानते हैं, परंतु उनको दोनों से ऊपर जो ईश्वर उसको नहीं मानते हैं। ऐसे हमारे धर्म हमारा जो सनातन सिद्धांत है, उन सनातन सिद्धांत में भी सांख्य और योग है, ये ईश्वर को इतना मुख्य नहीं मानते हैं, योग फिर मानता है, सांख्य कम मानता है, सांख्य प्रकृति पुरुष दो ही मानता है, जो एक जीवात्मा है एक जड़, इनको मानते हैं, इसको नहीं मानते हैं। ऐसे पूर्व मीमांसा है, वो पूर्व मानते इस रूप से इंद्र को मानते हैं, स्वर्ग को मानते हैं, पर ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो ईश्वर को ये जो जीव वो इंद्र है वो ईश्वर है, ऐसे ईश्वर को मानने वाले हैं, कई नहीं मानने वाले हैं। अब इसमें विचार करो, शास्त्र की बात तो हम माने नहीं, तो शास्त्र के नहीं माने उनसे मेरा कहना है, आप थोड़ा ध्यान दे कर मेरी बात सुने। एक समुदाय कहता है कि ईश्वर नहीं है, एक समुदाय कहता है कि ईश्वर है, दो बात। अब अगर ईश्वर है तो नहीं कहने वाला झूठा है, कहने वाला है कहने वाला सच्चा है, और ईश्वर अगर है ही नहीं तो नहीं कहने वाला सच्चा है और ईश्वर कहने वाला झूठा है, क्यों दो बात विरोधी एक साथ में नहीं रहती, दो विरोधी एक साथ में नहीं रहती, विरोध नहीं वो दो साथ कई साथ सैकड़ा हजारों साथ में रह जाएगी, पर एक एक विरोध जैसे रात है तो दिन नहीं है, दिन है तो रात नहीं है, तो विरोधी दोनों साथ में नहीं रहते, प्रकाश और अंधेरा दोनों साथ नहीं रहते। ऐसे ईश्वर है ईश्वर नहीं है दोनों साथ नहीं रहते, ईश्वर को माने तो है मानेगा नहीं मानेगा। तो नहीं मानने वाले के विचार करें कि वास्तव में ईश्वर की चर्चा करते हैं वे कहते हैं है, और एक क्या दर्शनता ईश्वर नहीं है, तो मूल में अगर ईश्वर नहीं है तो मानने वाला ने भूल कही। ध्यान सुनना मेरी बात, ईश्वर अगर मूल में नहीं है तो नहीं मानने वाले तो सच्चे हुए और मानने वाले झूठे हुए, क्योंकि ईश्वर है ही नहीं तो मानते झूठी बात है। अब झूठी बात है तो जो मानने वाले हैं उनके क्या नुकसान हुआ, ईश्वर मानने वाले हैं, ईश्वर नहीं मानने वाले, दोनों में खाने पीने रहने सहने खाने और जीने में मरने में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बरोबर ही रहे। परंतु अगर ईश्वर है ये बात सच्ची है तो नहीं मानने वाला ईश्वर से रीता रह जाएगा, क्यों मानते ही नहीं वो, तो ईश्वर होने वाला लाभ कैसे रहेगा। अगर है मानने वाला उसे लाभ ले लेगा, लाभ लेकर उस उन्नति कर लेगा, वो एक वृक्ष महात्मा बन जाएगा। मानने वाला साधना करके ईश्वर की प्राप्ति कर लेगा, तो नहीं मानने की अपेक्षा मानने वाला लाभ में ज्यादा रहेगा न मानने वाले की अपेक्षा। तो इसलिए दो जहां पाते होती है, अभी मुक्ति होती है नहीं होती है, एक समुदाय कहता है कि अभी मुक्ति नहीं होती, एक समुदाय कहते मुक्ति होती है। तो अगर मुक्ति नहीं होती ये बात सच्ची है तो मुक्ति होती है ये मानने वाले झूठे होंगे, और नहीं होती ये बात सच्चे होंगे। पर सच्चे होने पर मानने वालों की क्या हानि हुई, दोनों बरोबर ही रहेंगे, मुक्ति न मानने वालों की होगी न मानने वालों की होगी। पर मुक्ति होती है ये बात सच्ची निकली आवे तो फिर जो मानने वालों की मुक्ति हो जाएगी, न मानने वाले जीते रह जाएंगे। तो इस विषय में तर्क के द्वारा है मानना ही बढ़िया है, हमारे समझ में न आते तो भी वे लाभ में रहेंगे और नहीं मानने वाले घाटे में रहेंगे। और हम तो कहते ईश्वर है, मुक्ति होती है, कल्याण होता है, पर हम तो इसमें जोर कर इतना कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान है इसका। ये तो है बात एक तर्क की, और प्रत्यक्ष अनुमान है, अनुभव है। कैसे, जो ईश्वर का भजन करते हैं सच्ची रीति से, उसको कई चमत्कार होता है, मन में शांति होती है, हलचल मिट जाती है, और ईश्वर नहीं मानने वालों की हलचल नहीं मिटती। हमारे यहाँ विदेशी एक अंग्रेज आए थे, वो हिंदी जानते हैं, अच्छी हिंदी पढ़ते हैं, जानते हैं, बातें हुई उनसे। अंग्रेजी तो कई मिले हैं मेरे को, मेरी भाषा वे जानते नहीं, उनकी भाषा मैं नहीं जानता, तो बीच में रहकर हमारे बातें करवाते हैं, पर वो तो हिंदी जानता था, उनसे मैंने बातें की है। तो उनसे मैंने ये बात मोटी बात पूछी कि आप बताओ, आप हमारे हिंदुस्तान में आए, आपने घूमा देखा, वो जानना चाहते थे कि गीता प्रेस क्या है, कैसा है गीता प्रेस, इनका मूल क्या है, इन बातों खोज में वो आए थे। तो उनसे मैंने पूछा, वो जब जाने लगे तो मैंने कहा कि आपने ये देश, आपने वो देश है चीन इंग्लैंड और चीन जापान आदि में घूमा हुआ है, तो दूसरे देशों में देश में क्या फर्क है। तो साफ कहा कि ईश्वर की सत्ता मानना, आस्तिकता मानना, ये एक देश में विलक्षण बात है, ये और देशों में नहीं है, और देशों में ये बात नहीं मिलती है, ईश्वर की बात परमात्मा की बात मिलती नहीं। सब लौकिक बातें हैं उनमें, यहाँ तक अभी पैदा हो गई है, मैंने सुनी है, आप लोग ज्यादा परिचित हैं। मैं अखबार जनता में नहीं रहता हूँ, विदेशों के रेडियो में मैं सुनता नहीं हूँ, प्राय कभी कोई सुन लिया तो सुन लिया, नहीं सुनता नहीं हूँ, शौक ही नहीं है, ना अखबार पढ़ता हूँ विदेशों में क्या क्या हो रहा है। मेरी अपेक्षा आप बहुत लोग ऐसे मेरे से ज्यादा जानते हैं, उसमें अभी ये बात प्रचलित हुई है कि ब्याह करने की जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं ब्याह की, आवश्यकता ही नहीं, ये बात होगी ब्याह करने की जरूरत नहीं, बस स्त्री पुरुष दो है मिल जाए आपस में, मन मिल जाए हो गया, मन नहीं मिल जाए छोड़ दिया, ब्याह करके बंधन में क्यों पड़ता, ये वहां आजकल प्रचलित हो रही है बात, तो आप जानते होंगे, मैंने तो सुनी है। अब ब्याह करे तो ब्याह क्या है, या कुत्ता कुत्ती मिलते हैं ऐसा ब्याह है। हमारे यहाँ ब्याह महाराज श्रेष्ठ एक यज्ञ माना गया है, विवाह को एक यज्ञ माना है, उस विवाह में कन्यादान होता है, और कन्यादान करने वाले उन कन्या के माँ बाप भूखे रहते हैं, उसको कन्यावल कहते हैं। आजकल हमें पता नहीं, पुराने जो मैं जानता हूँ, मैंने देखा है, आज भी आस्तिक लोगों में इस बात होती है, वो भूखे रहते हैं, जब तक कन्यादान नहीं कर देंगे तब तक उनसे रोटी नहीं खाएंगे। रात्र आधी रात कल्याण होता है विवाह, कभी लगन जल्दी होता है, कभी लगन रात्रि को होता है, प्राय रात्रि को होता है, जल्दी होता है तो गोधूलिका का समय, जिस समय गाया आवे, राम जी का ब्याह भी उस गोधूलिका का समय हुआ है, गोधूल क्या होता है, मारवाड़ में गुदल क्या, गुदल क्या, गुदल क्या का ब्याह है, गुदल क्या का, गुदल क्या गोधूलिका, वो गुदल क्या हो गई, तो उसके ब्याह होता है। और रात्रि में 12 बज जाते हैं, ब्याह होता है 12 बज जाए, 1 बज जाए, ठीक चमड़ी में फेरा लेकर उतरते हैं, तब वो कन्यादान हो जाता है, उसके बाद माँ बाप अन्न खाते हैं। तो ये व्रत करते हैं, नियम से व्रत लेते हैं, नियम व्रत लेकर के संकल्प करते हैं और पारमार्थिक जी है। गीता की टीका में सत शब्द के अर्थ पांच किए हैं, सद्भावे साधु भावे सदित प्रशस्ते कर्मणि तथा सद पारे यज्ञ तपसी दान सदिति ये दान, तो पांच अर्थ किए सत के। उसमें प्रशस्ते कर्मणि की टीका में लिखे है प्रशंसनीय कर्मा विवाह आदो, जैसे प्रशंसनीय कर्म है विवाह, एक बड़ा प्रशंसनीय कर्म है ये प्रशस्त कर्म में टीका में विवाह लिख लेते हैं। तो इतना मांगलिक कार्य माना गया है और वो विष्णु रूप वर होता है, कन्या रूप है वो लक्ष्मी रूपी कन्या है, तो संकल्प करते हैं। बहुत सनातनी सज्जन आप बैठे हो, बहुत जानते हैं, न जानने वाले कम हो गए मेरी समझ में, प्राय जानते हैं यशालंकाराम सर्वस्त्राम लक्ष्मी रूपणी कन्याम हम विष्णु रूपाय वराय संप्रददे, ऐसा संकल्प होता है। विष्णु रूप वर को मेरी लक्ष्मी रूप कन्या शालंकाराम सर्वस्त्र अलंकार वस्त्र आगे पहने उसी कन्या को मैं विष्णु को प्रदान करता हूँ, ऐसा संकल्प होता है, दान दिया जाता है। तो ये कन्या दान का बड़ा भारी महत्व है। जिनके कन्या नहीं होती है ऐसे पुरुष की किसी ब्राह्मण की कन्या को लेकर और कन्यादान करते हैं, अपने कन्या में खूब पैसा लगाते हैं, हम कन्यादान करेंगे, हमारी कन्या नहीं है क्या करें। आज तो कन्या को गिरा देते हैं गर्भ से, बड़ी भारी हत्या है, मामूली हत्या नहीं है, वो मातृशक्ति है। ये बैठी है ना, ये आदरणीय इतनी है कि ये मातृशक्ति है। संसार में माँ के समान कोई संसार में नहीं, मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, शरीर के पुष्ट के लिए अपना सबको सेवा करने सबको सुख पहुंचाने के लिए माँ के समान कोई नहीं है, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है। तो वो कन्या गर्भ में आती है उसको देखते वो मातृ हत्या है, खास मातृशक्ति उसमें कितनी कितनों की माता बनेंगे, वो कितने बालकों लड़का कन्या कन्या और कन्या और पुत्र कितने होंगे, वो मातृशक्ति है। उस मातृशक्ति का नाश करने महान पाप है, यह पापम ब्रह्म हत्या, जो ब्रह्म हत्या का पाप है सबसे ऊंची ब्रह्म हत्या है, महापाप है महापाथ। ब्राह्मण को मार देना जो कि वास्तव में शास्त्र पढ़ा हुआ देगा, जिससे सैकड़ों हजारों आदमियों को शांति मिलती है, ऐसे को मार देने का बड़ा भारी पाप है। तो ब्रह्म हत्या का पाप है, उनके साम मदिरा पीने का वैसे ही पाप है, जैसे ब्रह्म हत्या का पाप होता है जैसे मदिरा पान का पाप है, वैसे ही सोना है रत्न है इनकी चोरी करने वाला है वो ही ब्रह्म हत्या के समान पापी है। और गुरु पत्नी गमन करे, गुरु पत्नी माँ से बढ़कर पूजनी उसके साथ कोई संग करे तो गुरु पत्नी और ये चार महापातक है, चार महातक पातक बनाया है। उनसे कहा है यत पापम ब्रह्म हत्याया, ब्रह्म हत्या का जो पाप है द्विगुणं गर्भपात ने, गर्भपात करने का दूना पाप है, उससे दूना पाप ब्रह्म हत्या से दूना महापातक से दूना महापातक पाप है। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात ने प्रायश्चितं अस्ति, पात होता है उसके दूर करने के प्रायश्चित होता है, ये प्रायश्चित पाप दूर हो जाए इसका प्रायश्चित नहीं है, इतना घोर पाप है। तस्यास्ति त्यागो, अगर स्त्री ऐसे गर्भपात करती हो तो पुरुष को चाहिए उसका त्याग कर दे, वो महान भ्रष्ट हो गई महान पतित हो गई छोड़ दे। आज तो पुरुष प्रेरणा करते हैं गर्भपात करो, अगर पुरुष स्त्रियां करती है उसने त्याग बताया, पराशर स्मृति में ये श्लोक आया है। दूना पाप है ब्रह्म हत्या से, ये कन्या को गिरा देते हैं, केवल दायदा देना पड़ता है दहेज देना पड़ता है, अरे दहेज देना पड़ता है, कन्या भगवान के यहाँ सदा कन्या बरोबर पैदा होती आई है, ब्राह्मणों का ब्राह्मणों के साथ क्षत्रियों का क्षत्रियों के साथ वेश्यों का वेश्यों के साथ शूद्रों का शूद्रों के साथ विवाह होते हैं, सब भगवान की तरफ से बरोबर पैदा होते हैं। और कन्या का पतन करने से अभी एक शहर में गिरने गई कुंवारे लड़का लड़की कितने हैं उसमें गिरना से, जहाँ 4000 पुरुष है तो 3000 कन्या है, 1000 का ब्याह होगा ही नहीं, कैसे आगे सृष्टि पैदा होगी। ये जयपुर की घटना करके मेरे को बताया है बात है, कहां तक सच्ची भगवान जाने, मैंने सुना है ये सुनी इसमें संदेह नहीं, सच्ची बात है। तो सबका सब हिंदू समाज नष्ट हो जाएगा, किस कारण से कन्या का गर्भ बात करते हैं इनसे, और पुरुष का भी कन्या बात कर देते हैं और फिर महाराज इसको संतति से निरोध कर देते हैं। तो थोड़ा ध्यान दें आप, वो कन्या मातृशक्ति है, मैं कोई द्वेष करता हो, निजी नहीं करता हूँ, मैं शास्त्र की बात करता हूँ। सच्ची शास्त्र में अध्यात्म विषय के अध्यय विषय है और आस्तिक विषय है, तो आस्तिक विषय ईश्वर का है, उसमें ऐसी बात है, तो ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। मैं तो इतना ही कहता हूँ भाई, मेरे को भिक्षा देते तो मैं भिक्षा लेता हूँ, जिस घर में गर्भपात हो जाए उसकी मेरे को भिक्षा मत देना, महान उसका अंदर अपवित्र होता है, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, ऐसे प्रार्थना कर देता हूँ। मैं जानता हूँ, उन्हें पता नहीं मेरे को, खरा ये विषय छोड़ देता हूँ। मैं आ गया बीच में, तो पाप को और पुण्य को आप सुन करके जान सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं देख सकते ये पाप हुआ या हत्या होती है तो प्रत्यक्ष दिखता है, गर्भपात तो प्रत्यक्ष दिखता है, जो पैदा होते हैं वही नष्ट करते हैं पहला, तो ये तो हत्या होती है। तो ऐसा विषय उसका ज्ञान वास्तव में शास्त्र से होता है, अनुभवी पुरुष बता सकते हैं, एक आदमी नहीं बता सकते, ऐसे जानकार इस विषय में है उनको इनका पता रहता है कि ये पाप है, पुण्य है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये ठीक है, ये बेठीक है, दोनों बात बताते हैं। तो वो ज्ञान हमारे को यहाँ होता है, हम अपने विचार करते हैं तो शास्त्र का ज्ञान होता है, उस ज्ञान के लिए आप और हम इकट्ठे हुए हैं, हम भी वो बात बताने के लिए, वो भी मैं भी जानना और आप भी जानो, अपने जाने अगाड़ी बढ़े उनसे, जिससे आप भी बढ़ो मैं भी बढ़ू, ऐसी बात को लेकर हम इकट्ठे हुए हैं। तो आस्तिक भाव है उसमें जो ईश्वर है उसको न मानने की अपेक्षा मानना ठीक है, अगर ईश्वर नहीं है तो ही मानने वाले लाभ में रहेंगे, कमी नहीं रहेगी, और नहीं मानने वाले हैं अगर ईश्वर नहीं है तो बरोबर रहेंगे, है तो जब मानने वाले ज्यादा हो जाएंगे लाभ में रहेंगे, ये युक्ति बड़ी प्रबल है। इस बात से आप जाने कि परमात्मा एक है, उस परमात्मा की बात आज सुबह मैंने बताई थी, सबके मालिक परमात्मा है, क्योंकि एक एक से ऊंचा हम देखते हैं, वो बात थोड़ी ध्यान देकर सुने, एक पढ़ा लिखा है उसे दूसरा पढ़ा लिखा है उसे और ज्यादा बड़ा पढ़ा लिखा पंडित है, बहुत विद्या जानने वाला है एक उससे भी ज्यादा जानने वाला है, ऐसे एक बलवान है उससे भी बलवान दूजा है, उससे भी बलवान दूजा है, एक बलवान है, एक बाप है, एक बेटा है, एक दादा है, परदादा है, अंत में ऐसा सबका मालिक है, तो सबका दादा है, सबसे ज्यादा जानकार है, सबसे ज्यादा बलवान है, सबसे ज्यादा ज्ञानवान है, वो ईश्वर है। क्योंकि ये परंपरा हमें वो दिखती है तो कहीं ना कहीं परंपरा ठहरेगी ना, जहाँ ठहरेगी वो ईश्वर है, उस ईश्वर को मान कर चलने से बहुत लाभ होता है, बहुत सहायता मिलती है, बहुत शांति मिलती है, प्रत्यक्ष बात है ये। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना, ईश्वर को माने और उसको जाने, उसकी उपासना करें तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ऐसे ईश्वर तत्व आज मैंने कहा था, एक बात कही थी, थोड़ी सुन लो, थोड़ी सी अब ज्यादा नहीं कहूंगा, सुबह हो गया। आज मैंने बताया सुबह कि जैसे आप गांव का काम करते करते घर पर आए कि भाई जल पी लें फिर जाएंगे काम करेंगे, तो बच्चा खेल रहा था आपका बालक, वो घुटनों के बल चलता है, अभी तो पैरों से चलने नहीं लगा है, इतना बच्चा भी एक ताड़ी ताला की चाबी हाथ में लेकर आकर बाप को देता है, लो। तो लेते ही पिता खुश हो जाते हैं, और इतना बड़ा हो जाए ऐसा कहते हैं, रीत है ऐसी, और बड़ा हो जाए तो इतना बड़ा हो जाए कहते हैं, तो क्या उस पिता को ताली मिलती नहीं थी, क्या ताली का अभाव था, क्या अभाव था, उनकी नई हुई ताली, उनका ताला, उनका आंगन, उनका छोरा, उनकी सब सृष्टि है, सिवाय पिता के और उनके पास क्या है, खुद भी पिता का है, पास है पिता की, परंतु वो देने की क्रिया से वो खुश हो जाते हैं, ऐसे वो परम परमात्मा प्रेम का परम पिता है, परमेश्वर है, सबसे अधिक विद्वान है, सब पूरे स्वामी गुरु काले नानक थेदा सबका गुरु है, सबसे ज्यादा जानकार है, सबसे बड़ा पैदा करने वाला पिता है, ऐसे बड़े हैं, उस वहां पत्र पुष्प फल जरा अर्पण करो, भगवान भोग लगाओ, भगवान खुश हो जाते हैं, क्या भगवान की चीजों का अभाव है, क्या भूखे है वो, ऐसे वो प्रश्न होते हैं। तो सज्जनों उस परमात्मा का नाम लेना है, उसकी उपासना करना है, उसकी आज्ञा का अनुसार चलना है, ऐसे काम करना आपका हमारा काम है, तो भगवान की तरफ चलने की बात है, इसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, जैसे कि उनका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, लोग और परलोग सब हमारे सिद्ध हो जाए, ऐसी बात है। नारायण नारायण नारायण।